नमस्कार भारत, आज है 2 नवंबर दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर के आसार, एक ओपिनियन पोल ने डोनाल्ड ट्रंप को हिलेरी क्लिंटन से मामूली अंतर से दिखाया आगे। भोपाल में मुठभेड़ में सिमी कार्यकर्ताओं की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित, मुठभेड़ पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी।
सिमी के लोग ही जेल तोड़ते, कोई हिंदू नहीं निकलता, और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते।
कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है?
कुनबे में मचे घमासान के बीच क्या मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ मिलाएंगे हाथ? अटकलों का बाजार गर्म।
कट्टरवादी ताकतों का एक जो मनोबल बढ़ा है उसको रोकने के लिए, देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बचाए रखने के लिए गठबंधन की आवश्यकता है, बिल्कुल है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, आप सुन रहे हैं सुशील झा से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले आ रहे सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच कांटे की टक्कर होती दिख रही है। 8 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले एबीसी न्यूज़ के एक सर्वेक्षण में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलरी क्लिंटन से आगे हो गए हैं। हालांकि अन्य सर्वेक्षणों में हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से थोड़ा आगे बताया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले तक हिलरी को 7 अंकों की बढ़त थी, लेकिन अब ये बढ़त बहुत कम हो गई है। मंगलवार को दोनों उम्मीदवारों ने फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया जैसे उन राज्यों में अपना समय बिताया जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां के मतदाताओं का मन बदलता रहता है। इराक की सरकारी सेनाएं 2 साल में पहली बार मोसुल शहर में प्रवेश करने में सफल रही हैं। इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के कब्जे वाले मोसुल पर नियंत्रण के लिए दोनों पक्षों के बीच मंगलवार पूरे दिन भीषण संघर्ष होता रहा। इराकी सेनाओं पर रॉकेट, मोर्टार और मशीन गन से हमले किए गए हैं। सरकारी सेनाओं ने शहर के पूरब में सरकारी टीवी की इमारत पर नियंत्रण कर लिया है और अब वो हर घर की तलाशी लेते हुए शहर की ओर बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि दक्षिण सूडान में उनका शांति मिशन जुलाई के महीने में राजधानी जुबा में लड़ाई के दौरान आम नागरिकों को बचाने में पूरी तरह से असफल रहा है। जुलाई की लड़ाई के बारे में शिकायतें आई थीं कि चीन और इथियोपिया के शांति सैनिकों ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जब सरकारी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता परिसर पर हमला किया था। इस मामले में जाँच की घोषणा की गई थी। जाँच के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक का कहना था, विशेष जांच में पाया गया कि शांति मिशन ने अपना काम प्रभावी तरीके से नहीं किया। जांच ने पाया कि आदेश और नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी। 11 जुलाई की घटना के दौरान शांति मिशन आम लोगों को की जान बचाने में असफल रहा। भोपाल में जेल से फरार हुए सिमी के 8 सदस्यों और उनकी कथित मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने एसआईटी के गठन की घोषणा की है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सीआईडी के एसपी अनुराग शर्मा करेंगे और वो पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर को सौंपेंगे। लातिन अमरीकी देश वेनेजुएला में विपक्ष के नेतृत्व वाली नेशनल असेंबली ने कहा है कि वो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की प्रक्रिया को फिलहाल टाल रहे हैं। नेशनल असेंबली के प्रवक्ता हेनरी रामोस अलूप का कहना था कि यह फैसला लिया गया है ताकि देश में आए राजनीतिक संकट का कोई समाधान निकाला जा सके। दोनों पक्षों के बीच वार्ताओं के लिए वेटिकन ने पहल करवाई थी, जिसके बाद से विपक्ष ने यह कदम उठाया है। फ्रांस के कैलिस में प्रवासियों के शिविर में एरिट्रियाई ईसाइयों और अफगानिस्तान के मुस्लिम किशोरों के बीच लड़ाई के बाद दंगा नियंत्रण करने वाली पुलिस को बुलाया गया है। कैलिस में जहां प्रवासियों के शिविर हैं उसे जंगल कहा जाने लगा है। पुलिस के अनुसार संघर्ष में करीब 100 किशोर शामिल थे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग को अब एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। मतदान से पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ा जा सके। पिछले दिनों हुए ओपिनियन पोल्स में हिलेरी क्लिंटन लगातार आगे चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप लगातार पिछड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को एबीसी न्यूज के एक ओपिनियन पोल में ट्रंप को 1 पॉइंट से हिलेरी से आगे दिखाया गया है। हालांकि अन्य सर्वेक्षणों में हिलेरी अभी भी आगे चल रही हैं, लेकिन उनकी बढ़त का अंतर जरूर कम हुआ है। एबीसी न्यूज के पोल की पूरी जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात की।
देखिए, ये जो ताज़ा सर्वेक्षण आया है ये एबीसी न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट का साझा पोल है, और उसके अनुसार मई के बाद पहली बार ट्रंप हिलरी क्लिंटन से 7% से आगे हो गए और इसीलिए उसको गोल गोल करके 1 आगे बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि यही सर्वेक्षण जब 23 अक्टूबर को हुआ था तो हिलरी क्लिंटन करीब 12 आगे थी। तो ये आप कह सकते हैं कि ट्रंप के लिए काफी अच्छी खबर वो मान रहे हैं और हिलरी क्लिंटन के लिए ये थोड़ा सा ये चौंकाने वाली खबर है। FBI ने जो पिछले शुक्रवार को हिलरी के ईमेल्स के मामले की फिर से जांच करने की बात की, उसके बाद से इस सर्वेक्षण के अनुसार बताया जा रहा है कि हिलरी के समर्थकों में उत्साह की भारी कमी दिखी है। और यहाँ लेकिन ये भी याद दिलाने की जरूरत है कि 2012 में मिट रॉमनी भी ओबामा से 1 आगे नजर आए थे लेकिन हार गए। 2004 में जॉन केरी जॉर्ज बुश से 1 आगे थे ठीक चुनाव से 1 पहले और वो भी हार गए। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये इसकी वजह से आप कुछ किसी फैसले पर पहुंच सकते हैं। कई राज्यों में यहाँ अर्ली वोटिंग का भी प्रावधान है और उनमें अंदाजा मिल रहा है कि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी है। अभी जो शुरुआती वोट्स हैं उनको ज्यादा उनके हक में नजर आए हैं। कुल मिलाकर आप अभी यही कह सकते हैं कि टक्कर काफी कांटे की हो गई है और ट्रंप कैंपेन के शब्दों में मोमेंटम जिसे कहते हैं वो उनके साथ है।
लेकिन ये जो बात अभी सामने आ रही है 1 से बढ़त की ओपिनियन पोल में, इसको अगर हम समग्रता में देखें तो चुनाव तक आते आते जो मतदान का समय है उस समय तक आते आते इसका महत्व तो कैसे उभरेगा?
देखिए, चुनाव का दिन जब करीब आने लगता है तो अमरीकी चुनाव में ये एक तरह का ट्रेंड रहा है कि सर्वेक्षणों में मुकाबला इसी तरह का नजर आने लगता है यानी कांटे का, और हर दिन ये कई बार लगता है कि बदलता रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी भी अगर इलेक्टोरल कॉलेज का नक्शा देखें आप अमेरिका में तो कई राज्य हैं जो बरसों से डेमोक्रेट्स रहे हैं और कुछ जो हमेशा से रिपब्लिकन्स को वोट देते आए हैं। इन्हें यहाँ पर ब्लू वॉल और रेड वॉल यानी ब्लू डेमोक्रेट्स का रंग है रेड रिपब्लिकन्स का रंग है उस हिसाब से वॉल का नाम दिया जाता है। और ये सभी राज्य अपने अपने पोजिशन पर अगर बरकरार रहे तो हिलरी क्लिंटन को उस अभी भी काफी बढ़त हासिल है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अमेरिकी चुनाव का फैसला उन राज्यों की बदौलत होता है जिन्हें हम बैटल ग्राउंड्स कहते हैं, यानी वहां वोटरों का रुझान आखिरी मिनट तक बदल सकता है और इस तरह के जो सर्वेक्षण आते हैं उनका असर उन राज्यों पर खासा होता है। इस बार खासतौर से फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया इन पर नजर है और इन सभी राज्यों में कांटे की टक्कर है। कहीं हिलरी आगे है तो कहीं ट्रंप है, लेकिन अभी भी कई जो यहाँ चुनावी पंडित हैं उनका कहना है कि हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी है। लेकिन राजनीति में पंडितों को कितनी बार मुंह की खानी पड़ती है ये बात भारत के वोटरों से कौन बेहतर बता सकता है।
ये थे वॉशिंगटन में BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। इराक के मोसूल शहर पर नियंत्रण की लड़ाई में इराकी सेनाएं पहली बार शहर के बाहरी इलाकों में पहुंच गई हैं। मोसूल पर पिछले 2 से इस्लामिक स्टेट का कब्जा रहा है और इराकी सेनाएं बार बार इस पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करती रही हैं। पिछले 2 से भीषण लड़ाई के बाद अब इराकी सेना को सफलता मिलती नजर आ रही है। पूरी जानकारी के साथ सुशील झा।
इराक के उत्तरी शहर मोसूल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए पिछले कई दिनों से मोसूल के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। अब इराकी सेना के आतंकवाद निरोधक दस्ते के सैनिकों ने मोसूल के कुकजाली में सरकारी टीवी की इमारत पर नियंत्रण कर लिया है। सेना की टुकड़ी के साथ मौजूद BBC के संवाददाता के अनुसार सैनिकों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। सेना के अनुसार मोसूल के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी ऐसे ही अभियान जारी हैं। इराक के आतंकवाद निरोधक सेवा के प्रवक्ता सबाह अल नुमान ने BBC से कहा है कि मोसूल में IS के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। उनका कहना था, आज हमने मोसूल में बड़ी सफलता हासिल की है। हमने एक महत्वपूर्ण इलाके को आजाद कराया जो कि पूरब दिशा से मोसूल में प्रवेश का मुख्य द्वार है। इससे पहले सोमवार को इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी ने कहा था कि मोसूल में 3 से 5 हजार चरमपंथी मौजूद हैं और उनके पास आत्मसमर्पण करने या मर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इराकी सैनिकों ने पिछले 2 से शहर के आसपास डेरा डाल रखा है। पिछले 2 से मोसूल से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के अभियान में 50,000 इराकी सैनिक, कुर्द लड़ाके, सुन्नी अरब कबीलाई लड़ाके और शिया हथियारबंद लड़ाके शामिल हैं। अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता जॉन डोरियन का कहना था कि अगर इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे मारे जाएंगे। अगर वो लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, अगर वो भागेंगे तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। उन्हें बच के निकलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मोसूल के लोगों के साथ जो किया है उसके बाद इराकी सेना उन्हें यहाँ रहने नहीं दे सकती है। मोसूल के पूरब में स्थित बजवाया गांव पर नियंत्रण के बाद सोमवार से मोसूल के औद्योगिक इलाके कुगजाली पर हमला किया गया था। इराकी सैनिकों को आरपीजी मशीनगन और भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। मोसुल पर इराकी सेना की घेराबंदी शुरू होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने मोसुल में रह रहे 15 लाख आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मानवाधिकार मामलों से जुड़े अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को ताज़ा रिपोर्टों में कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट ने कई आम नागरिकों की हत्याएं भी की हैं।
ब्यौरा सुना रहे थे सुशील झा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को घेरने में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में प्रस्तावित विरोध रैली की बजाय शुक्राना रैली करने का फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी से बात की और सबसे पहले पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पाकिस्तान में किस तरह देखा जा रहा है।
देखिए, जो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इससे में लगता यही है कि जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था उसको शायद अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि सरकार जो है वो कई हफ्तों से बल्कि महीनों से इमरान खान को ये ऑफर कर रही थी कि वो पनामा लीक्स की जो कमीशन बनना है उस पे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर एग्री कर लें, और अगर वो एग्री नहीं करते तो हम ये रिक्वेस्ट लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर दे। लेकिन इमरान खान ये बात नहीं मान रहे थे और वो एजिटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे थे। वही बात तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने कही है और उसको इमरान खान ने मान लिया है। तो लगता यही है कि जो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू था वो प्रिवेल किया है करंट सिचुएशन में।
सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे नवाज शरीफ की अपनी स्थिति पर क्या कुछ असर होगा?
देखिए, उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमरान खान ने जो एजिटेशन है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है। वो अब जो धरना दे रहे थे या जो लॉकडाउन इस्लामाबाद को वो करने जा रहे थे उससे उन्होंने अब इनकार कर दिया है, और अब वो आज इस्लामाबाद में जलसा तो कर रहे हैं लेकिन वो समझ लीजिए कि एक तरह से शुक्राने का है। वो अपनी विक्ट्री मान रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और उस पर वो अपने लोगों को बुला के उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो एहतजाजी पॉलिटिक्स का ख़त्म होना नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छी खबर है।
और इमरान खान के लिए भी क्या ये आदेश राहत बनकर आया है, क्योंकि जो उनकी रैली थी जिसे वो करने वाले थे ये उम्मीद की जा रही थी वो उतनी कामयाब नहीं होगी जितने वो दावे कर रहे हैं?
जी, लग ऐसा ही रहा था, क्योंकि जितने लोगों का उन्होंने मजमा इकट्ठा करने की बात कही थी उतने लोग तो वो इकट्ठे नहीं कर पाए थे। वो बार बार अपने जो बनीगाला इस्लामाबाद में उनकी जो रेजिडेंस थी वहाँ से वो लोगों को कह रहे थे कि मेरे पास पहुँचो, बनीगाला आओ, इस्लामाबाद आओ, लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 दिन में कोई बहुत ज़्यादा लोग कारकुन जो है पीटीआई के वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनके तो पास बहुत ज़्यादा लोग जमा नहीं हो पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला एक तरह से फेस सेविंग भी है उनके लिए कि वो अब अपने वर्कर्स के पास जाके ये कह रहे हैं कि देखिए, हम जो मुतालबा कर रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो सरेंडर करे अदालत के सामने, तो उसने सरेंडर कर दिया है और अब अदालत जो है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी, और यही हमारा मौकफ था, यही हम चाह रहे थे। वो इस तरह की बात करके अपने आप को एक फेस सेविंग देने की कोशिश करेंगे आज।
ये थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू के संवाददाता आसिफ फारूकी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में सिमी के 8 कार्यकर्ताओं के मौत के मामले में जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस मामले में एसआईटी यानी विशेष जांच दल गठित की गई है जो मुठभेड़ के मामले की जांच करेगी। 2 दिन पहले भोपाल सेंट्रल जेल से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े 8 कैदी फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में पुलिस की एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। सुनिए भोपाल से शुरेनियाजी की रिपोर्ट।
भोपाल में जेल से फरार हुए सिमी के 8 सदस्यों और उनकी कथित मुठभेड़ में हुई मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने एसआईटी के गठन की घोषणा की। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम का नेतृत्व सीआईडी के एसपी अनुराग शर्मा करेंगे और वो पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस हेडक्वार्टर को सौंपेंगे। वहीं आईपीएस अधिकारी सुधीर शाही को सुशोभन बैनर्जी की जगह एडीजी जेल बनाया गया है। सुशोभन बैनर्जी को सिमी कार्यकर्ताओं के जेल से फरार होने के बाद हटा दिया गया था। दीपावली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के सदस्यों की मुठभेड़ में हुई मौत से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की पूरी कार्यवाही पर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि इस जांच के बाद इस कथित मुठभेड़ से जुड़े कई पहलू सामने आ सकते हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि 8 सीमी कार्यकर्ताओं से मुठभेड़ की जांच एनआईए नहीं करेगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एनआईए केवल सीमी सदस्यों की जेल से फरार होने की जांच करेगी। भोपाल में इस मसले पर अब मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा भी सामने आ गए हैं। उन्होंने भी सीमी कार्यकर्ताओं के जेल से भागने, कांस्टेबल रमाशंकर यादव की हत्या और उसके बाद हुए कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक संयुक्त बयान में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है।
जानकारी दे रहे थे शुरय नियाजी। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल जेल ब्रेक मामले की जांच का काम पूर्व डीजीपी नंदन दुबे को सौंपा है। एनआईए की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने नंदन दुबे से संपर्क किया और सबसे पहले यही पूछा कि उनकी जांच एनआईए की जांच से कितनी अलग होगी।
मेरी जो जांच है उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से मुझको करना, जो एनआईए करेगी वो तो क्रिमिनल केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें बहुत सी चीजें हैं कि इसमें आगे यानी सुधार कैसे कर सकते हैं, अभी के लिए कौन जिम्मेदार है, इस तरह के इसमें कई यानी 5 पॉइंट्स हैं जिसमें की वो जांच कर।
आपकी जांच शुरू करने के पहले ही कई जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जेल अधिकारी भी बता रहे हैं कि वहां तादाद से ज्यादा कैदी थे, इक्विपमेंट्स जो लगे हुए थे सीसीटीवी कैमरा वगैरह वो खराब थे। क्या आपकी जांच के दायरे में ये सब चीजें होंगी?
हमारी उसमें ये है कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या गड़बड़ हुआ वो सब। उसमें जो 5 पॉइंट्स हैं वो मैं अभी इसमें नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मैंने प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता मैं इंक्वायरी अभी से।
तो आपकी ये जांच कब से शुरू होगी और कब तक इसकी रिपोर्ट आ सकती है?
मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर हो जाएगा।
ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे। इस बीच जेल से सिमी कार्यकर्ताओं के भागने और फिर पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में उनके मारे जाने को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सिमी कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने और मुठभेड़ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके जवाब में कल 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर पलटवार किया। सुनिए सुशीला सिंह की रिपोर्ट।
भोपाल के करीब सिमी के 8 कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भोपाल पुलिस ने सोमवार को दावा किया था कि उसने एक सुरक्षाकर्मी का गला रेतकर जेल से भागे सिमी के 8 कार्यकर्ताओं को एक मुठभेड़ में मार दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह घटना के सामने आने के बाद से ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कल पूछा कि आखिर सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोग ही जेल तोड़कर क्यों भागते हैं?
क्या कारण है कि खंडवा में से निकलते हैं 2 सीमी के मुसलमान निकलते हैं जेल तोड़ के, कोई हिंदू नहीं निकलता? भोपाल से भी जेल तोड़ते हैं तो मुसलमान धर्म के सीमी के लोग ही जेल तोड़ते हैं, कोई हिंदू नहीं निकलता? और जब जेल टूटती है तो उसमें मुसलमान ही भागते, हिंदू नहीं भागते?
दिग्विजय सिंह के सवालों का जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो दिया, लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या दिग्विजय सिंह जो सवाल उठा रहे हैं इस मामले में वही कांग्रेस की भी लाइन है?
अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो मुझे कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से पूछना है कि जो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं क्या वो कांग्रेस पार्टी की लाइन है? क्योंकि कई बार दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस कांड के बारे में भी सवाल उठाया था और सोनिया गांधी को कहना पड़ा कि ये पार्टी की लाइन नहीं है। मैं भर्त्सना करता हूं, ये सिमी के आतंकवादी थे, ये लोग एक सवाल क्यों नहीं करते हैं कि जो वहां पर जेल का हवलदार मारा गया उसको किसने मारा था?
दूसरी तरफ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा।
आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट टेररिस्ट, सम पीपल आर कंसर्न अबाउट सिमी।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ लोग टेररिस्ट को लेकर ज्यादा चिंतित क्यों हैं, कुछ लोग सिमी को लेकर फिक्रमंद हैं, कुछ लोग जेल से भाग निकले लोगों के लिए चिंतित हैं। ये लोग भारतीयों और भारत देश की सुरक्षा से ज्यादा जो लोग हमेशा कानून तोड़ते हैं उनके लिए ज्यादा चिंता दिखा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये फैशन बन गया है।
हालांकि मुठभेड़ पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर कई सवाल जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी कल कथित मुठभेड़ पर सवाल उठाए।
इसकी जांच होनी चाहिए कि फेक इनकाउंटर है कि जेन्युइन इनकाउंटर है, इसमें संदेह है।
उधर कई मानवाधिकार संगठन भी कथित मुठभेड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तमाम सवालों के बीच मुठभेड़ की जांच के लिए SIT गठन का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे कथित मुठभेड़ को लेकर शुरू हुई राजनीति थमेगी ऐसा फिलहाल नहीं लगता।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन की एक और दिलचस्प कोशिश शुरू हुई है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी अभी तक गठबंधन की बात को सिरे से नकार रही थी, लेकिन अब इन दोनों पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ने की कोशिशें तलाशनी शुरू कर दी हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हुई मुलाकात की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। हालांकि सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता आधिकारिक तौर पर इस मुलाकात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि सत्ता में आने के लिए ऐसी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रणनीति तैयार कर रहे प्रशांत किशोर अभी तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन लगता है अब उन्हें सहयोगी दलों की जरूरत दिखने लगी है। यही नहीं, अभी तक समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल न होने की बात कर रही थी, लेकिन अब गठबंधन की वो खुद पहल कर रही है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इसी सिलसिले में जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव और RLD नेता अजीत सिंह से मुलाकात की थी, लेकिन मंगलवार को प्रशांत किशोर और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कह रही हैं। कांग्रेस नेता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
इस तरह की जानकारियां चैनल्स और अखबारों के माध्यम से आ रही है, किसी कांग्रेस के नेता के माध्यम से नहीं आ रही है, किसी दूसरे दल के नेता के माध्यम से नहीं आ रही, सिर्फ चैनल और अखबारों के माध्यम से आ रही है। हम तो नहीं लगता कि इसमें कोई सत्यता हो, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से अकेले लड़ने का मन बना चुकी है और निश्चित तौर पे आने वाले 2017 का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी।
आधिकारिक तौर पर तो समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मुलाकात की जानकारी न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि ये मुलाकात हुई भी है और गठबंधन के संबंध में चर्चा भी हुई है। गठबंधन से अभी तक सपा भले ही मना करती आ रही थी, लेकिन अब उसे इसकी जरूरत महसूस हो रही है। पार्टी नेता मोहम्मद शाहिद कहते हैं,
2014 के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान में कट्टरवादी ताकतों का एक जो मनोबल बढ़ा है, उसको रोकने के लिए, देश की जो कर्जा जमी तहजीब है उसको बचाए रखने के लिए गठबंधन की आवश्यकता है, बिल्कुल है। उसमें जो भी लोग, जो गांधीवादी लोग हैं, जो गांधी विचारधारा के हैं, चौधरी चरण सिंह साहब की विचारधारा के हैं, लोहिया जी की विचारधारा के लोग हैं, इनको सबको एक पक्ष आना चाहिए, तभी देश बच पाएगा।
लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण शुक्ल कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब गठबंधन की संभावनाएं इसलिए तलाश रही है क्योंकि पिछले 2 महीने से पार्टी के भीतर जो कुछ भी हुआ उसे लेकर पार्टी में काफी डर है, लेकिन वो कहते हैं कि इस गठबंधन की संभावनाएं काफी कम है।
तो इस गठबंधन को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियाज दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, एक फीलर जरूर डाले जा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर वो इस गठबंधन में शामिल होते हैं बिहार की तरह, तो उनके लिए फिर एक नेशनल पार्टी वाला स्टेटस, चूंकि यूपी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है कांग्रेस के लिए भी, सारी नेशनल पार्टी के लिए, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो अगर वो गठबंधन में शामिल होते हैं तो उन्हीं का नुकसान होगा आगे आने वाले समय में।
समाजवादी पार्टी नेताओं ने इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से जब मुलाकात की थी, तब उन्होंने महागठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल करने की बात कही थी। मुलायम सिंह यादव की ये पहल उसी दिशा में देखी जा रही है। वैसे जानकारों का कहना है कि इन पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन ये कोशिशें किस दिशा में जा रही है इसका अंदाजा 5 नवम्बर को हो जाएगा, जब समाजवादी पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस मनाएगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों ने आज किन खबरों को प्राथमिकता दी है, ये बताने के लिए सुशील झा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जी सुशील, क्या है आज की सुर्खियां?
आज मैं अपनी शुरुआत करूंगा इकोनॉमिक टाइम्स से, और एक जो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बारे में जो खबर चल रही थी, तो स्पेशल रिपोर्टर वो कहते हैं कि साइरस हैड स्कोर टॉप ग्रेड्स इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि साइरस का जो काम था पिछले समय में, पिछले 3 महीने में, तो उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी। उनको सैलरी में रेज, मतलब वेतन में इजाफा उनका होने वाला था, तो उसको देखते हुए उनको हटाया जाना काफ़ी विवादित रहा है। उसके साथ ही खबर छपी है, रतन टाटा ने अपने स्टाफ को बताया है कि साइरस को हटाना एक टफ कॉल था, और लेकिन जो ग्रुप है उसके बेहतरी के लिए वो ज़रूरी कदम था। मिस्त्री ने जवाब दिया है, कई अखबारों में छपा है कि डोकोमो की जो डील थी जिस पे कहा जा रहा था कि रतन टाटा को भरोसे में नहीं लिया गया था, तो मिस्त्री ने कहा है कि रतन टाटा को और पूरे ग्रुप को इस बाबत भरोसे में रखा गया था और इस बारे में जो भी खबरें हैं वो गलत हैं कि उन्होंने अपने मन से कोई काम किया था। तो ये एक
इस बारे में नई नई खबरें हर रोज
हर दिन नई नई खबरें आ रही है। और ये भी है कि भाई प्रधानमंत्री से भी मिलने की कोशिश हुई थी, दोनों मिले थे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा एलिगेशंस में जांच की बात की उसको ईटी ने अपने प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा जो भोपाल में सिमी के कार्यकर्ताओं का जो एनकाउंटर है वो खबर हर अखबार में छपी है, अलग अलग एंगल से छपी है। ईटी कहता है कि कुछ नेता, जैसे इनमें नाम दिए मायावती और शरद यादव जैसे नेता, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने पर भी विचार कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में से जुड़ी खबर में कहा गया है कि जो जांच होगी वो एनआईए की एक अलग जांच होगी, एसआईटी की एक अलग जांच होगी। हिंदू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट छापी है। पहली रिपोर्ट कहती है कि सिमी मैन हैड नो गन्स, यानी कि सिमी के जो सदस्य थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी, आई विटनेस का अकाउंट उन्होंने दिया है। और एक फीचर की खबर आपको बताता चलूँ कि एक महिला कांस्टेबल छत्तीसगढ़ की, उस पर एक पूरा का पूरा फीचर हिंदुस्तान टाइम्स में। स्मिता टांडे नाम इनका, कांस्टेबल है और फेसबुक पर उनके 7 लाख फॉलोअर हैं।
ओहो, काफ़ी हैरान करने वाली खबर। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल की खबरें। भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी क्रिकेट सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन होना है। कौन से खिलाड़ी टीम में होंगे और कौन बाहर, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंग्लैंड के खिलाफ अगले हफ्ते से शुरू होने वाली 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन आज किया जाएगा। इससे पहले भारत ने पिछले दिनों न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज एक तरफा रूप से 3-0 से जीती थी। चयनकर्ताओं के सामने सवाल होगा कि वो तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को किसकी जगह टीम में जगह दें, क्योंकि उमेश यादव, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी की थी। शिखर धवन न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं कर सके, उनके चोटिल होकर बाहर होने का फायदा गौतम गंभीर को मिला, उन्होंने अर्धशतक भी जमाया। तो अमित मिश्रा ने एक दिवसीय सीरीज में 15 विकेट अपने नाम कर अपना दावा पेश कर दिया है। भारतीय टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
काफी कुछ डिपेंड करेगा कि आप फास्ट बॉलर से खेलना चाहते हैं या स्पिनर से खेलना चाहते हैं, क्योंकि स्पिनर अगर आप देखें, बांग्लादेश ने अभी इंग्लैंड को हराया जिसमें ऑफ स्पिनर मैथ्यूसन, उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉल डाल के इंग्लैंड की पारी अकेले से ही खत्म कर दी। पर अनिल कुंबले, विराट कोहली वो कॉम्बिनेशन रखते हैं, पिचेस रखते हैं, उनको ऑपोजिशन को भी आंकना पड़ेगा क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड में फर्क है।
अब चयन के बाद ये भी अंदाजा हो जाएगा कि भारत इंग्लैंड को कैसे विकेट देने जा रहा है। उधर शारजाह में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच 3रा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल 3रे दिन का खेल समाप्त होने के समय पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 87 रन बनाए थे। स्टंप के समय अजहर अली 45 और विकेट कीपर सरफराज अहमद 19 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि कप्तान मिसबाउल हक 4 रन बना सके तो अनुभवी यूनिस खान और असद शफीक अपना खाता तक नहीं खोल सके। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 9 ओवर में केवल 10 रन देकर 3 और ऑस्टन चेज ने 39 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले वेस्ट इंडीज की पहली पारी कल 337 रन पर समाप्त हुई। वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रैथवेट ने नाबाद 142 रनों की शतकीय पारी खेली। पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज को 56 रनों की बढ़त मिली, लेकिन दूसरी पारी में पाकिस्तान के 4 विकेट केवल 87 रन पर गिरने से ये मामूली बढ़त भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल पाकिस्तान के पास 31 रनों की बढ़त है और उसके 6 विकेट बाकी हैं।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों से पहले आ रहे सर्वेक्षणों में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच कांटे की टक्कर होती दिख रही है। इराक की सरकारी सेनाएं 2 साल में पहली बार मूसुल शहर में प्रवेश करने में सफल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि दक्षिण सूडान में उनका शांति मिशन जुलाई के महीने में राजधानी जुबा में लड़ाई के दौरान आम नागरिकों को बचाने में पूरी तरह से असफल रहा है। भोपाल में जेल से फरार हुए सिमी के 8 सदस्यों और उनकी कथित मुठभेड़ में हुई मौत की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बुल्गारिया में पुलिस ने एक झील से 1 करोड़ 30 लाख के जाली यूरो नोट बरामद किए हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद विश्व भारती में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और दुनिया भर की हर पर बदलती खबरों के लिए देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।